एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और आज की इस ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, पर है हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। टैक्सेशन, यानी कि कर व्यवस्था।
हाँ बिल्कुल, और ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में वो इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन, दुकानों पर जीएसटी बिल, ये सब घूमने लगता है ना। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इसे सिर्फ इन कागजों और नंबरों से आगे बढ़कर समझें, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी किताब है, स्टीफन स्मिथ की टैक्सेशन, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सीरीज का हिस्सा है। छोटी सी किताब है, पर टैक्स की दुनिया के जो बड़े बुनियादी सवाल हैं उन्हें बहुत ही साफ तरीके से समझाती है।
और मुझे लगता है आज के समय में ये समझना और भी जरूरी हो गया है। सरकारें कैसी चलती हैं, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कौन सी चीजों को बढ़ावा मिलता है, किन्हें रोका जाता है, इन सबके पीछे कहीं ना कहीं टैक्स का ही हाथ होता है।
बिल्कुल, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का मसला नहीं है, ये समाज कैसे चलता है, हमारे कलेक्टिव फैसले क्या होते हैं, उन सब का आधार है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टीफन स्मिथ कौन थे ये और इनकी बात में क्या खास है?
हाँ, स्टीफन स्मिथ ब्रिटेन के एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, और जैसा आपने कहा वो सिर्फ किताबी प्रोफेसर नहीं थे, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ाते तो थे, लेकिन साथ ही इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल स्टडीज यानी IFS जैसी संस्था से भी जुड़े थे।
अच्छा, IFS तो काफी प्रतिष्ठित है ना, अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए जानी जाती है।
तो स्मिथ में वो क्या कहते हैं, अकेडमिक गहराई भी थी और टैक्स पॉलिसी की जो असल दुनिया की चुनौतियां हैं उसकी समझ भी थी।
ये कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल होता है, अक्सर या तो थ्योरी वाले एक्सपर्ट होते हैं या फिर प्रैक्टिकल लोग।
सही कहा, और उनकी एक और खासियत थी, उन्हें एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स यानी पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की भी गहरी समझ थी।
अच्छा,
हाँ, तो इससे उन्हें जो आजकल कार्बन टैक्स जैसे मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए एक अलग ही नजरिया मिलता था। वो सिर्फ ये नहीं बताते थे कि टैक्स क्या है, बल्कि ये भी कि क्यों है और कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों पर उनकी पकड़ थी।
दिलचस्प। तो अब आते हैं किताब पर, टैक्सेशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये किताब हमें सिखाती क्या है, इसका मुख्य आइडिया क्या है?
देखिए, इससे आप टैक्स की दुनिया का एक नक्शा समझ सकती हैं, एक तरह का गाइडेड टूर। स्मिथ का मकसद है हमें ये समझाना कि भाई टैक्स क्यों होते हैं, उन्हें डिजाइन कैसे किया जाता है और उनका समाज पर असर क्या पड़ता है।
तो ये सिर्फ ये नहीं बताते कि इनकम टैक्स क्या है या GST क्या है?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि टैक्स सिर्फ सरकार के लिए पैसा जुटाने का एक जरिया भर नहीं है।
अच्छा।
हाँ, स्मिथ कहते हैं कि टैक्स सिस्टम असल में किसी समाज के मूल्यों, उसकी प्राथमिकताओं और उसके आर्थिक फलसफे का आईना होता है। हम किस चीज को जरूरी मानते हैं, किसे नहीं, यह हमारे टैक्स सिस्टम में झलकता है।
ये तो बहुत गहरी बात है। हम तो आमतौर पर टैक्स को सिर्फ एक कटौती की तरह देखते हैं, सैलरी से कट गया या सामान पे लग गया।
बिल्कुल, स्मिथ इसी सोच को तोड़ते हैं। वो बताते हैं कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम बनाने में हमेशा दो ताकतों के बीच एक तरह की खींचतान चलती रहती है।
दो ताकतें कौन सी?
एक है दक्षता, एफिशिएंसी, यानी टैक्स ऐसे लगाया जाए कि अर्थव्यवस्था को कम से कम नुकसान पहुंचे, लोगों के काम करने, इन्वेस्ट करने के फैसलों पर बुरा असर ना पड़े और टैक्स वसूलने का खर्चा भी कम हो।
ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरी?
दूसरी है निष्पक्षता, इक्विटी, यानी टैक्स का बोझ समाज में बटे कैसे, क्या सबसे बराबर लिया जाए या जिसकी जितनी क्षमता है उससे उतना लिया जाए, क्या अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, ये सारे सवाल निष्पक्षता से जुड़े हैं।
अच्छा, तो दक्षता और निष्पक्षता।
हाँ, स्मिथ कहते हैं कि कोई भी टैक्स सिस्टम इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। कोई एक परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है जो हर जगह हर समाज के लिए सही हो, यह हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है।
तो ये किताब हमें इनकम टैक्स, वैट, GST, कॉर्पोरेट टैक्स, या तक कि पर्यावरण टैक्स, इन सब के बारे में बताती है।
हाँ, इन सब के मूल सिद्धांत समझाती है, लेकिन किसी एक सिस्टम की वकालत नहीं करती, बल्कि हमें वो सोचने का तरीका, वो फ्रेमवर्क देती है जिससे हम किसी भी टैक्स सिस्टम को समझ सकें, उसका विश्लेषण कर सकें।
मतलब ये हमें सवाल पूछना सिखाती है
कि हाँ,
ये टैक्स क्यों है, क्या ये सही है, किसके लिए सही है।
बिल्कुल, ये हमें सोचने के औजार देती है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, किताब के अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। शुरुआत होती है सबसे बुनियादी सवाल से, जैसा पहले चैप्टर में है, टैक्स क्यों, हमें टैक्स की जरूरत ही क्यों है।
हाँ, ये अच्छा सवाल है, सरकारें टैक्स लेती क्यों हैं?
स्मिथ इसका जवाब बड़े सीधे तरीके से देते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण है पब्लिक गुड्स, यानी सार्वजनिक वस्तुएं।
पब्लिक गुड्स
जैसे
जैसे
देश की सुरक्षा, सड़कें, पार्क, कानून व्यवस्था, साफ हवा, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत तो सबको है, पर कोई एक व्यक्ति अकेले इन्हें बनाया खरीद नहीं सकता, और बाजार भी इन्हें ठीक से मुहैया नहीं करा पाता।
क्यों नहीं करा पाता बाजार?
क्योंकि इनमें फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर सड़क बन गई तो आप किसी को उसे इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते, भले ही उसने उसके लिए पैसे दिए हों या नहीं। तो लोग सोचेंगे मैं क्यों पैसे दूं जब फायदा तो सबको मिलेगा।
अच्छा, हाँ ये तो है।
तो इसलिए सरकार को टैक्स लगाकर इन चीजों को फंड करना पड़ता है। दूसरा कारण है वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य। पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सरकारी अस्पताल, स्कूल, ये सब चलाने के लिए पैसा चाहिए। और तीसरा बड़ा कारण है मार्केट फेलियर, यानी बाजार की विफलताएं, जैसे प्रदूषण। एक फैक्ट्री प्रदूषण फैलाती है जिसका नुकसान पूरे समाज को होता है, तो सरकार उस पर टैक्स लगा सकती है ताकि वो उस नुकसान की कीमत चुकाए।
ठीक है, तो टैक्स जरूरी है, ये समझ आ गया। पर अब अगला सवाल, जो दूसरे चैप्टर में है, टैक्स लगाएं कैसे, किन सिद्धांतों पर?
यहाँ स्मिथ दो मुख्य सिद्धांतों की बात करते हैं। पहला है लाभ सिद्धांत।
लाभ सिद्धांत मतलब
जिससे जितना फायदा हो रहा है उससे उतना टैक्स लो। जैसे जो सड़क ज्यादा इस्तेमाल करता है वो ज्यादा टोल टैक्स दे। सुनने में तो ये बड़ा तार्किक लगता है ना?
हाँ, लगता तो है, पर क्या ये हर जगह लागू हो सकता है?
यही मुश्किल है, हर चीज का फायदा मापना बहुत मुश्किल है। जैसे पुलिस सुरक्षा का फायदा किसे कितना मिल रहा है, ये कैसे पता चलेगा?
सही बात है, तो दूसरा सिद्धांत क्या है?
दूसरा सिद्धांत ज्यादा आम है और ज्यादातर टैक्स सिस्टम इसी पर आधारित है, भुगतान क्षमता सिद्धांत।
एबिलिटी टू पे, यानी चुकाने की क्षमता।
हाँ, इसका मतलब है कि जिसकी टैक्स देने की क्षमता ज्यादा है उसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए। क्षमता कैसे मापे? आमतौर पर आय या संपत्ति से। हमारा इनकम टैक्स इसी पर आधारित है, ज्यादा कमाने वाले ज्यादा प्रतिशत टैक्स देते हैं।
अच्छा, और यहीं पर शायद वो एडम स्मिथ वाले सिद्धांत भी आते होंगे, वो चार सिद्धांत।
हाँ बिल्कुल, एडम स्मिथ ने टैक्स डिजाइन के चार सिद्धांत दिए थे जिन्हें स्मिथ यहाँ डिस्कस करते हैं। इक्विटी यानी निष्पक्षता, इसमें दो बातें हैं, हॉरिजॉन्टली इक्विटी यानी समान स्थिति वालों पर समान टैक्स, और वर्टिकल इक्विटी यानी ज्यादा क्षमता वालों पर ज्यादा टैक्स।
ठीक है, इक्विटी।
फिर सर्टेनिटी यानी निश्चितता, टैक्स कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये सब साफ होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तीसरा कन्वीनियंस यानी सुविधा, टैक्स देना आसान होना चाहिए, लोगों को परेशानी ना हो।
ओके।
और चौथा एफिशिएंसी यानी दक्षता, टैक्स वसूलने का खर्चा कम से कम हो और टैक्स लोगों के आर्थिक फैसलों को ज्यादा ना बिगाड़े, मतलब ऐसा ना हो कि टैक्स की वजह से लोग काम करना या निवेश करना ही बंद कर दें।
हाँ, और यहीं पे फिर वो पहली वाली बात आ जाती है, निष्पक्षता और दक्षता के बीच की खींचतान।
बिल्कुल, यही वो कोर टेंशन है। ज्यादा निष्पक्ष बनाने की कोशिश में टैक्स शायद कम कुशल हो जाए, और ज्यादा कुशल बनाने की कोशिश में शायद निष्पक्ष ना रहे।
ठीक है, तो अब कुछ खास तरह के टैक्सेस पर आते हैं। सबसे कॉमन है इनकम टैक्स, आय पर लगने वाला कर। किताब इसके बारे में क्या कहती है?
स्मिथ इसके तीन जरूरी हिस्से बताते हैं। पहला, टैक्स बेस यानी किस चीज को इनकम मानेंगे, सिर्फ सैलरी या बिजनेस का मुनाफा, किराया, ब्याज, सब कुछ ये तय करना पड़ता है।
दूसरा
टैक्स यूनिट, टैक्स किस पर लगेगा, हर व्यक्ति पर अलग अलग या पूरे परिवार की आय जोड़कर। भारत में हम इंडिविजुअल पर लगाते हैं।
ओके, और तीसरा
रेट स्ट्रक्चर, टैक्स की दर क्या होगी, क्या ये सबके लिए एक जैसी होगी, जिसे अनुपातिक या प्रोपोर्शनल कहते हैं, या आय बढ़ने के साथ दर भी बढ़ेगी, जिसे प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव कहते हैं, या फिर कम आय वालों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, जिसे प्रतिगामी या रिग्रेसिव कहते हैं।
भारत में तो प्रोग्रेसिव सिस्टम है, ज्यादा आय ज्यादा टैक्स रेट।
हाँ, लेकिन इस पर हमेशा बहस चलती है कि कहीं ज्यादा ऊंची दरें लोगों को ज्यादा कमाने या ज्यादा मेहनत करने या निवेश करने से हतोत्साहित तो नहीं करती। ये वही एफिशिएंसी वाला सवाल है।
ये बहस तो पुरानी है। अच्छा, आय के बाद अब आते हैं खर्च पर टैक्स, जैसे वैट या जीएसटी। ये आजकल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है।
हाँ बिल्कुल, इसका मुख्य तर्क ये है कि ये टैक्स बचत सेविंग को हतोत्साहित नहीं करता, क्योंकि टैक्स तभी लगता है जब आप पैसा खर्च करते हैं, अगर आप बचा रहे हैं तो टैक्स नहीं लगता।
और ये काम कैसे करता है वैट जीएसटी?
इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। ये चीज के बनने से लेकर बिकने तक हर स्टेज पर जो वैल्यू जोड़ी जाती है सिर्फ उस पर टैक्स लगता है, और हर स्टेज पर व्यापारी को पिछले स्टेज पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। इससे टैक्स पर टैक्स लगने वाली समस्या कैस्केडिंग इफेक्ट कम होती है।
ये तो ठीक है, पर इसकी एक आलोचना भी तो है कि ये गरीबों पर ज्यादा बोझ डालता है।
हाँ, ये इसकी मुख्य आलोचना है, क्योंकि गरीब लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा जरूरी चीजों, खाना कपड़ा वगैरह पर खर्च करते हैं, अमीर लोग ज्यादा बचत करते हैं। तो कुल आय के अनुपात में देखें तो गरीबों पर टैक्स का बोझ ज्यादा पड़ता है, इसीलिए इसे प्रतिगामी रिग्रेसिव माना जाता है।
तो इसका कोई हल है?
स्मिथ बताते हैं कि कई देश इसी असर को कम करने के लिए जरूरी चीजों जैसे खाने पीने के सामान पर या तो टैक्स लगाते ही नहीं या बहुत कम दर पर लगाते हैं। भारत में भी ऐसा ही है।
अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े टैक्स पर जिस पर काफी बहस होती है, कंपनी टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स।
हाँ, और यहाँ स्मिथ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, टैक्स इंसिडेंस।
टैक्स इंसिडेंस ये क्या होता है?
इसका मतलब है टैक्स का असली बोझ, असल वजन पड़ किस पर रहा है। कानूनी तौर पर तो कंपनी टैक्स चुका रही है, पर क्या वो बोझ वाकई कंपनी ही उठा रही है?
मतलब
हो सकता है वो ये बोझ किसी और पर डाल दे। बिल्कुल, यही स्मिथ कहते हैं। हो सकता है कंपनी अपने शेयर धारकों को कम डिविडेंड दे तो बोझ शेयर धारकों पर गया, या हो सकता है वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कम बढ़ाए तो बोझ कर्मचारियों पर गया,
या फिर चीजें महंगी कर दें।
हाँ, या फिर अपनी चीजों की कीमतें बढ़ाकर ग्राहकों से वसूल ले तो बोझ ग्राहकों पर गया। स्मिथ कहते हैं कि ये बोझ आखिरकार कहाँ गिरेगा ये कानून तय नहीं करता, बल्कि बाजार की ताकतें तय करती हैं, डिमांड और सप्लाई, कंपटीशन कितना है वगैरह।
बाप रे, तो ये कहना कि कंपनियों पर टैक्स बढ़ा दो इतना सीधा नहीं है जितना लगता है।
बिल्कुल नहीं, उसका असर कहीं और भी पड़ सकता है जिसे हम शायद देख ना पा रहे हो। ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद किताब धन और विरासत टैक्स, वेल्थ एंड इनहेरिटेंस टैक्स की बात करती है।
हाँ, ये इनकम टैक्स से अलग है। इनकम टैक्स आय यानी फ्लो पर लगता है जो हर साल होती है, वेल्थ टैक्स जमा हुई संपत्ति यानी स्टॉक पर लगता है जो सालों में बनती है, विरासत टैक्स वो है जो किसी के मरने के बाद उसके की संपत्ति वारिसों को मिलने पर लगता है।
और इनका मकसद क्या बताया जाता है?
मुख्य मकसद समाज में बढ़ती असमानता को कम करना है। तर्क ये है कि बहुत ज्यादा संपत्ति कुछ ही हाथों में जमा ना हो जाए।
सुनने में तो ये अच्छा लगता है, पर क्या ये आसान है लागू करना?
नहीं, स्मिथ इसकी व्यवहारिक मुश्किलें भी बताते हैं। पहली, संपत्ति का सही सही मूल्यांकन वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है। जमीन, मकान, आर्ट, इनका दाम कैसे तय होगा? दूसरी, डर रहता है कि अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए अपनी संपत्ति देश से बाहर ले जाएंगे, कैपिटल फ्लाइट। और एक तर्क ये भी दिया जाता है कि ये दोहरा टैक्स है, क्योंकि ये संपत्ति शायद उसी आय से बनी है जिस पर पहले इनकम टैक्स लग चुका है, तो इस पर फिर से टैक्स क्यों?
तो यहाँ भी मतलब वही संतुलन वाली बात आ गई, कोई आसान जवाब नहीं।
हाँ हाँ बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं एक अलग तरह के टैक्स पर, सुधारात्मक टैक्स, करेक्टिव टैक्सेस। इन्हें पिगुवियन टैक्स भी कहते हैं, आर्थर पिगु नाम के अर्थशास्त्री के नाम पर।
सुधारात्मक मतलब ये कुछ सुधारने के लिए हैं।
हाँ, इनका मुख्य मकसद सरकार के लिए पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों का व्यवहार बदलना है। ऐसी चीजों या गतिविधियों पर टैक्स लगाना जो समाज के लिए हानिकारक है ताकि लोग उन्हें कम करें।
अच्छा, जैसे?
जैसे सिगरेट, शराब पर लगने वाला सिन टैक्स, या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्बन टैक्स, या प्लास्टिक बैग पर टैक्स, या शायद चीनी वाले ड्रिंक्स पर टैक्स।
हाँ, तो आइडिया ये है कि इन चीजों की जो सामाजिक लागत है यानी समाज को जो नुकसान हो रहा है उसे टैक्स के जरिए इनकी निजी लागत में जोड़ दिया जाए।
बिल्कुल, ताकि लोग जब इन्हें खरीदें या इस्तेमाल करें तो सामाजिक नुकसान की कीमत भी चुकाएं और शायद इनका इस्तेमाल कम करें।
ठीक है, भारत में भी पेट्रोल डीजल पर सेस लगता है या तंबाकू पर भारी टैक्स है, ये शायद इसी सोच का हिस्सा है।
हाँ, काफी हद तक। अब किताब हमें आज के दौर की एक बड़ी चुनौती पर लाती है, टैक्स चोरी, बचाओ और अंतर्राष्ट्रीय टैक्स।
टैक्स इवेजन अवॉइडेंस, हाँ ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है, खासकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में।
स्मिथ यहाँ पहले टैक्स चोरी इवेजन और टैक्स बचाओ अवॉइडेंस के बीच का फर्क बताते हैं। चोरी तो सीधी सीधी गैर कानूनी है, आय छुपाना, गलत जानकारी देना,
और बचाओ
कानून के दायरे में रहकर किया जाता है। कानून की कमियों या बारीकियों का फायदा उठाकर टैक्स कम करने की कोशिश, ये लीगल तो हो सकता है पर अक्सर इसे नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता।
और ये मल्टीनेशनल कंपनियां कैसे करती हैं?
स्मिथ बताते हैं कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ने कंपनियों के लिए ये आसान कर दिया है। वो अपना मुनाफा कागजों में ऐसे देशों में दिखा सकती हैं जहां टैक्स कम है। इसे ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं, या फिर टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में अपनी कंपनियां खोलकर टैक्स बचा सकती हैं।
तो इसका हल क्या है?
क्योंकि पैसा और कंपनियां आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सकती हैं, इसलिए किसी एक देश के लिए अकेले इनसे मुकाबला करना मुश्किल है। स्मिथ कहते हैं कि इसके लिए देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, जैसे आजकल OECD और G20 मिलकर एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स पर काम कर रहे हैं।
अच्छा, और किताब का आखिरी हिस्सा किस बारे में?
आखिरी चैप्टर बात करता है टैक्स की राजनीति,
पॉलिटिक्स ऑफ टैक्सेशन।
हाँ,
राजनीति मतलब?
मतलब ये कि कोई टैक्स नीति आर्थिक रूप से कितनी भी अच्छी, कितनी भी कुशल क्यों ना हो, अगर वो राजनीतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है तो वो फेल हो सकती है।
अच्छा, कोई उदाहरण?
स्मिथ ब्रिटेन के कुख्यात पोल टैक्स का उदाहरण देते हैं जो 1990s के दशक में लाया गया था। ये एक फ्लैट टैक्स था, हर वयस्क को बराबर रकम देनी थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब।
हर किसी को बराबर?
हाँ, शायद इसे बनाने वालों ने सोचा होगा कि ये लागू करने में आसान होगा, कुशल होगा, पर आम लोगों ने इसे घोर अन्यायपूर्ण माना। उन्हें लगा कि ये गरीबों पर ज्यादती है। इसके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए, दंगे हुए, और आखिरकार सरकार को इसे वापस लेना पड़ा, और उस सरकार की लोकप्रियता भी बहुत घट गई।
बाप रे, तो सबक क्या है इससे?
सबक ये है कि टैक्स सिस्टम को सिर्फ आर्थिक सिद्धांतों पर खरा उतरना काफी नहीं है, उसे सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी स्वीकार्य होना चाहिए। लोगों के मन में ये भावना होनी चाहिए कि सिस्टम निष्पक्ष है। पब्लिक की सहमति बहुत जरूरी है।
ये तो बहुत अहम बात है। तो ये तो हुई किताब के अलग अलग हिस्सों की बात। अगर हम इन सबको मिलाकर देखें तो वो कौन से मुख्य संदेश या थीम्स हैं जो इस किताब से उभर कर आते हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे बड़ा थीम तो वही है, निष्पक्षता बनाम दक्षता, इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी की जो लगातार खींचतान है।
हाँ, ये बात तो बार बार आई।
स्मिथ यही दिखाते हैं कि हर टैक्स नीति, हर टैक्स सिस्टम कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। कोई एक आइडियल सिस्टम नहीं है, हमें हमेशा चुनना पड़ता है। जैसे ज्यादा प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स शायद ज्यादा निष्पक्ष लगे, पर हो सकता है वो थोड़ा कम कुशल हो।
और कोई टैक्स जो बहुत कुशल लगे, जैसे शायद वो पोल टैक्स, वो एकदम अन्यायपूर्ण लग सकता है।
बिल्कुल। दूसरा अहम संदेश है कि टैक्स सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का जरिया नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने, उसे इंजीनियर करने का एक शक्तिशाली औजार है।
सामाजिक इंजीनियरिंग।
हाँ,
मतलब
सरकारें टैक्स का इस्तेमाल करके लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। सिगरेट पर टैक्स लगाकर उसे कम करना, या इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी, जो असल में नेगेटिव टैक्स है, देकर उन्हें बढ़ावा देना। ये दिखाता है कि टैक्स नीतियां हमारे समाज के मूल्यों और लक्ष्यों को दर्शाती हैं।
और तीसरा?
तीसरा वो टैक्स इंसिडेंस वाली बात, यानी टैक्स का असली बोझ कौन उठा रहा है, यह हमेशा साफ नहीं होता। कानूनी तौर पर टैक्स कौन दे रहा है और आर्थिक बोझ किस पर पड़ रहा है, ये अलग अलग बातें हो सकती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
हाँ, कि बोझ शेयर होल्डर पर है या कर्मचारी पर या ग्राहक पर।
सही। ये हमें सतही नारों से आगे बढ़कर असलियत समझने में मदद करता है। चौथा पॉइंट है टैक्स को लागू करने यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का महत्व।
अच्छा, हाँ।
कोई नीति कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे जमीन पर ठीक से लागू नहीं किया जा सकता, या उसे लागू करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, या बहुत ज्यादा चोरी होती है, तो वो सफल नहीं होगी। पोल टैक्स फिर से एक उदाहरण है। वहीं GST जैसा जटिल सिस्टम भी, अगर उसका डिजाइन जैसे क्रेडिट वाला सिस्टम अच्छा है, तो ज्यादा कारगर हो सकता है।
और आखिरी मुख्य थीम?
आखिरी है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियां। आज के दौर में पैसा, कंपनियां, लोग सब आसानी से सरहदें पार कर सकते हैं। इससे किसी एक देश के लिए अकेले टैक्स लगाना और वसूलना मुश्किल हो गया है।
टैक्स हेवन वाली समस्या।
हाँ, और इसीलिए अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जैसी पहल इसी दिशा में कोशिश है।
ये तो हो गए मुख्य संदेश। किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो यू नो दिमाग में अटक जाती हैं, कुछ यादगार विचार या कोट्स?
हाँ बिल्कुल, जैसे एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसका सार कुछ ऐसा है, किसी भी टैक्स सिस्टम का डिजाइन आखिरकार दक्षता और निष्पक्षता की जो आपस में टकराने वाले लक्ष्य हैं उनके बीच समझौतों की एक पूरी सीरीज होती है। कोई एक परफेक्ट हल नहीं है, बस अलग अलग विकल्प हैं जो समाज की अपनी प्राथमिकताओं को दिखाते हैं।
मतलब हमें हमेशा चुनना पड़ेगा, कोई जादू की छड़ी नहीं है।
सही। और दूसरी वो टैक्स इंसिडेंस वाली बात, टैक्स चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी किसके पास है, इससे ये तय नहीं होता कि उसका आर्थिक बोझ असल में कौन उठा रहा है। टैक्स का असली बोझ कानूनों से नहीं बल्कि बाजार की ताकतों से तय होता है।
ये भी बहुत गहरा पॉइंट है, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं।
और तीसरा वो पोल टैक्स वाला सबक, एक टैक्स जो आर्थिक रूप से भले ही कुशल हो लेकिन अगर वो राजनीतिक रूप से मंजूर नहीं है तो आखिरकार वो एक बुरा टैक्स है। एक टिकाऊ टैक्स सिस्टम के लिए जनता की सहमति और न्याय की भावना उतनी ही जरूरी है जितना कि आर्थिक सिद्धांत।
मतलब लोगों का भरोसा जितना भी उतना ही जरूरी है, सिस्टम को फेयर लगना चाहिए।
बिल्कुल।
ये सब जानना वाकई बहुत दिलचस्प है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी, ये ज्ञान, ये आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकता है, हमें इससे क्या फायदा?
ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम अगली बार बजट में टैक्स घटने बढ़ने की खबरें सुनेंगे या चुनावों में कोई पार्टी टैक्स कटौती का वादा करेगी तो हम थोड़ा ज्यादा समझदारी से सोच पाएंगे।
कैसे?
हम ये सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा ये जो बदलाव हो रहा है इसका असली फायदा किसे मिलेगा? क्या ये सिस्टम को आसान बनाएगा या और मुश्किल? इस टैक्स कटौती के बदले में कौन सी सरकारी सेवा या सुविधा कम हो सकती है? क्या ये निष्पक्ष है? क्या ये कुशल है?
हाँ, मतलब हम सिर्फ हेडलाइन पढ़कर खुश या दुखी नहीं होंगे बल्कि उसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल। दूसरी बात, हम अपनी सैलरी स्लिप पर जो इनकम टैक्स कटता है या दुकान पर चीजें खरीदते हुए जो GST देते हैं उसे सिर्फ एक बोझ की तरह नहीं देखेंगे। हम समझेंगे कि ये उस बड़े सामाजिक समझौते का हिस्सा है जिसके तहत हमें सड़कें मिलती हैं, सुरक्षा मिलती है और दूसरी सार्वजनिक सेवाएं मिलती हैं।
और वो सुधारात्मक टैक्स वाली बात भी?
हाँ, जब सरकार किसी चीज पर टैक्स बढ़ाती है जैसे तंबाकू पर या प्लास्टिक पर, तो हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं भी हो सकता। हो सकता है सरकार हमारे व्यवहार को बदलना चाहती हो, हमें किसी हानिकारक चीज से दूर करना चाहती हो। ये हमें सरकार की नीतियों को बेहतर समझने में मदद करता है।
तो कुल मिलाकर ये किताब और ये चर्चा हमें एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनने में मदद करती है।
हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये हमें टैक्स जैसे जटिल विषय पर सोचने और बात करने के लिए एक बेहतर ढांचा देती है।
इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे अहम या शायद सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
थी, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी कि कॉर्पोरेट टैक्स का बोझ वाकई कौन उठाता है। ये इतना अनिश्चित और जटिल है, हम अक्सर मान लेते हैं कि कंपनी ही दे रही है, पर असलियत कितनी अलग हो सकती है। इसका असर हम सब पर हो सकता है अलग अलग तरीकों से। ये मेरे लिए एक बड़ी लर्निंग थी।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये रही कि टैक्स नीति में कभी कोई एक सही जवाब नहीं होता। ये हमेशा अलग अलग लक्ष्यों, खासकर दक्षता और निष्पक्षता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश होती है। हर विकल्प के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, और हर समाज को यह तय करना होता है कि वो किस संतुलन को चुनना चाहता है। ये कोई खत्म होने वाली बहस नहीं है, ये लगातार चलती रहती है।
बिल्कुल सही कहा। तो इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं।
हाँ।
इन सारे सिद्धांतों, इन दुविधाओं को जानने के बाद जरा सोचिए कि आपके हिसाब से एक टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए। वो कौन से मूल्य हैं जिन्हें उसे सबसे अच्छी तरह दर्शाना चाहिए? क्या दक्षता सबसे जरूरी है या निष्पक्षता, या शायद इन दोनों के बीच का कोई और रास्ता है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।